ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
भक्तों का स्वागत है हमारे दूसरे जागृति कार्यक्रम में। स्ट्रेंथ काफी अच्छा लग रहा है और काफी होप्स हमें हैं कि जागृति की जागृति बनी रहेगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास पिछले दो संडे मॉर्निंग प्रोग्राम का अटेंडेंस है यहाँ पर, तो उससे शुरुआत करें। फर्स्ट दो संडे हुए हैं हमारे जागृति के पश्चात, तो टोटल स्ट्रेंथ 100 है इस फोरम का, और फर्स्ट संडे काफी अच्छा फिगर रहा, 60 प्रेजेंट मंगल आरती, 37 एबसेंट और 3 लेट। हम नाम नहीं बताएंगे यहाँ पे कौन कौन क्या क्या हैं, केवल फिगर्स बता रहे हैं ताकि हमको कहाँ पर रिपेयर वर्क करना है वो फिर हम सब्जेक्टिवली कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से फिगर्स में इंडिविजुअली आप कौन से कैटेगरी में हैं आप इंडिविजुअली जानते होंगे पर्सनली। तो सेकंड संडे मंगल आरती का अटेंडेंस थोड़ा कलयुग का प्रभाव हो गया, 52 प्रेजेंट आउट ऑफ 100, एब्सेंट 44, लेट 4। तो एब्सेंटी में संख्या बढ़ी है, प्रेजेंटी में कम हुई है और लेट में भी बढ़ी है। आप सुटेबल है मंगल आरती के लिए, मंगल आरती अर्थात मंगल आरती से लेके पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, नहीं खाली जपा नहीं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब पीएम तक नहीं, भागवतम तक। तो वो लिस्ट इसमें नहीं है क्या? तो वो हो नहीं रहा था क्या? नहीं मतलब उनकी तरफ से नहीं हो रहा था, ठीक है। आप यहां से कितने आप हाथ ऊपर कीजिए कि संडे के अलावा आपके लिए पॉसिबल, या संडे को पॉसिबल नहीं, संडे के अलावा आपके लिए पॉसिबल है मॉर्निंग प्रोग्राम? नहीं, एक मिनट हाथ ऊपर, तो आप लोग लिख लो ना इनके नाम जो भी। नोट डाउन कर लीजिए आप। तो फिर प्रभु जी किसी को आना है? तो सबसे पहले जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया पिछले दो सेटिंग्स में कि साधना जिसकी शुरुआत हम इतने समय से कर चुके हैं और जो भी हम इस फोरम में हासिल करना चाह रहे हैं उसकी बुनियाद है साधना, और किसी कारण के वजह से आप अभी भी शेयर कर सकते हैं कि क्या कारण हो रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40% एब्सेंटीज हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और ये तो फिगर हम इतना काउंट नहीं करेंगे क्योंकि दो संडे, एक गौर पूर्णिमा था और एक राधा मदन गोपाल अपीयरेंस डे, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 100% अटेंडेंस होना चाहिए था। तो इतने दो हमारे एनुअल मेजर फेस्टिवल के बावजूद एब्सेंटिज्म काफी है। तो आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसको हम सॉर्ट आउट कर सकें डिस्कस कर कर? आप लोग सी, द रूल हैज बीन मेड सो फ्लेक्सिबल दैट ओके, इफ प्रभु जी कैन मैनेज ऑन संडे, देन माताजी शुड कम सम अदर डे व्हेन प्रभु जी टेक्स केयर ऑफ द किड। I think you should know more than me. So that's I don't think that's a very strong reason not to come. हाँ, कर सकते हैं ना adjust. कितने दूर से? हाँ, ये हम पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ माताजी इस दूर से नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ सॉल्यूशंस उसके लिए, अकम्पनीमेंट माताजी मिल के आए। मैं खाली गिवअप नहीं करना चाह रहा है, इसलिए मैं थोड़ा और इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिस्कस करना चाहता हूँ। आप ही के पास है तो बोलिए। हाँ, गुड, क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसे? क्या
अगर फॉर एग्जांपल देवलाली के पांच कपल है,
हाँ,
तो उसमें से चार प्रभु जी एक दिन आ जाए और एक प्रभु जी और बाकी माता जी दूसरे दिन आ जाए?
ये भी अच्छा सोल्यूशन है। सुना आप लोगों ने कि अगर देवलाली के पांच कपल्स हैं तो संडे के दिन चार कपल्स आए एक साथ, चार प्रभु जी एक साथ आए और बाकी माता जी जो नहीं आ पा रहे हैं तो एक प्रभु जी लेकर उनको, लेकिन उनके तो मंडे ही सबको फ्री रहता है ना, प्रभु जी को आपका मंडे ही है ना? नहीं, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा आपको हम पकड़ रहे हैं। हम यहाँ पर केवल 5 से लेकर 9 की बात कर रहे हैं। दुकान कब खुलती है? हाँ, तो संडे को माता जी जा सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, संडे को माता जी भी साथ में आओ ना, बच्चों के साथ सब लोग आओ, छुट्टी है बच्चों को तो, है ना? हो सकता है ना, कर सकते हैं, करने को सब कुछ हो सकता है, ट्राई कीजिए।
उसमें एक प्रैक्टिकल ऐसा हो सकता है कि बहुत बार ऐसा करते भी है यात्रा में कि बच्चों को नहा धुला कर 5 बजे लाना, ऐसे कोई इतना इशू नहीं रहता। कभी कभी बच्चों को हम लोग ऐसे ही लेके आते हैं और भले वो इधर सोते हैं मगर हम लोग नहा धोकर आ जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं। हाँ, 3:30 बजे बच्चों को भी नहा धुला कर सुनाना ही है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को ऐसे ही लेके आ सकते हैं, भले इधर सोएंगे हमारे साथ।
अब ये सब प्रॉब्लम भी मुझे नहीं लगता था डील करने पड़ेंगे अभी। बाय द वे, हमारे फोरम का नाम जागृति है, इफ इन केस यू हैव फॉरगॉटन। देखिए, ऐसा है कि हम यहां पर आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग खुद से होकर कितना इसका फायदा उठाएं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर। हम कोई किसी के सामने हमारे अटेंडेंस या प्रेजेंटी का झंडा नहीं गाड़ कर दिखा रहे, ये हमारी भलाई के लिए, ये हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए है। तो इसलिए इसका ऊपर से हम थोड़ा फॉर्म दे रहे हैं डिसिप्लिन का, अनुशासन का, वो इसलिए ताकि जब तक हमारे ऊपर एक चेक नहीं होता तो हमको वो मोटिवेशन मिलता नहीं, इसलिए थोड़ा डिसिप्लिन रख रहे हैं। और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स? हाँ ठीक है, जब कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई एब्सोल्युटली प्रोग्राम नहीं, कितने बजे सोते हैं जनरली? 10, 10:30। ठीक है, जागृति का हमारा मैक्सिमम 10 बजे तक चलता है, तो पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगता है? ठीक है, हम 11:30 ले लें, 11:30। तो 11:30, अब अगर आप पूछो ब्रह्मचारी आश्रम में जब भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, बॉम्बे में तो जब मैं प्रोग्राम्स करता था हफ्ते में 5 प्रोग्राम, तो ट्रैवलिंग में ही 45 मिनट्स एवरेज, मिनिमम 45 मिनट्स लग जाता था, पहुंचते पहुंचते कई बार 11:45, कई बार 12, और फिर मंगला। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप संडे को जाकर रेस्ट कर सकते। कितना टाइम है? खाली 5 से लेके, संडे का अगर है तो 5 से लेके 10:30, फिर बाद में 11 से लेके रात के और दूसरे दिन सुबह तक टाइम है सोने के लिए। ट्राई कीजिए। ओके, एक बार वो ग्रूव में आएंगे ना तो धीरे धीरे इतना मुश्किल नहीं होता। अभी जैसे हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में भी, मैं पर्सनली आपको बताता हूं कि चाहे कितना भी लेट हो जाए, वो बॉडी क्लॉक ऐसा हो गया कि मंगल आरती के लिए वो उठ ही जाता है अपने आप, बिना अलार्म के उठ जाता है। हाँ, फिर दिन में रेस्ट थोड़ा सा ले लेते हैं उसको कवर अप करने के लिए। देखिए, इसलिए है कि ताकि हम एक दूसरे को एनकरेज करें, नहीं तो अगर हम चाहें तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल बना सकते हैं किसी भी चीज को। अगर हम चाहें तो क्या क्या कुछ नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल बना सकते हैं भगवत धाम जाना, मंगल आरती भी आना, और अगर हम चाहें तो एब्सोल्युटली पॉसिबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस भी हैं आप लोगों के पास। हाँ बोलिए। एक माइक माइक दो ना इनको।
हरे कृष्णा। तो हमने ऐसा किया था कि मोबाइल का आउटपुट डायरेक्ट होम थिएटर में लगा दिया और कीर्तन लगा दिया था सुबह
होम थिएटर में।
हाँ, तो होम थिएटर में लगा दिया। हाँ, मतलब साउंड सिस्टम होता है पूरा, साउंड सर।
होम थिएटर अलग होता है प्रभु, होम थिएटर, होम थिएटर मतलब एक बाकायदा अलग से कमरा होता है बंगले के अंदर जहां पर स्क्रीन होता है, प्रोजेक्टर होता है, उसको होम थिएटर बोलते हैं।
आजकल वो विदाउट स्क्रीन का होम थिएटर है, अभी उसमें खाली स्पीकर सिस्टम है तो उसमें आउटपुट लगा दिया था, तो अलार्म बजता है तो पूरे घर में अपने आप बज जाता है।
खाली उठने के लिए आपने टेक्निक,
खाली उठने के लिए, दूसरा तो कोई सोल्यूशन है
नहीं। ओके ठीक, और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? ओके, तो हमने तो फाइनली फिर हम इस एग्रीमेंट पे आए हैं कि 100% अटेंडेंस। यदि कोई इतनी बड़ी आपातकालीन स्थिति आ गई कि जिसको हम टोटली, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या कोई टर्मिनल डिजीज हो गया या कर्फ्यू लग गया, तो वो सब केसेस हम कंसिडर करेंगे। बाकी हम चाहेंगे कि ये सब रीजंस को हम सॉर्ट आउट कर एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए जागृत अवस्था में जागृति को बढ़ाएं मंगल आरती में आकर, क्योंकि हमारा साधना का जो पार्ट है वो उसमें इंक्लूड है। साधना ऑलरेडी चालू हो गया, उसके अंदर साधना कार्ड अभी आप लोग लाए, साधना कार्ड अच्छा लाए नहीं आप लोग, ठीक है। तो साधना कार्ड भरने का क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा, भरा कि नहीं, कुछ रियलाइजेशंस एक्सपीरियंसेस साधना कार्ड भरते हुए जो दूसरों को इंस्पायर करें? माइक लीजिए इनको। हाँ आपके
एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा कि जो लास्ट कॉलम था कि सेवा का, तो वो भरने के टाइम पे रियलाइजेशन होना कि कुछ तो भी सेवा होना चाहिए,
करना है
सेवा करना है। तो मैंने हमारे काउंसलर को भी रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट थी कि तो हर मंगलवार के दिन बैकअप पे 8:30 से 10:30 बजे का सेवा मैंने लिया हुआ।
हरी बोल, गुड।
मेरा ये रियलाइजेशन रहा प्रभु जी कि जब से साधना कार्ड आया भरने के लिए, तो पहले ऐसा था कि घर की पूजा वूजा करके जरा सुबह पूरी माला नहीं हो पाती थी, तो ऑफिस में जाके माला करते थे। पर अभी ऐसा तय किया कि 9 बजे के पहले अपने को उसमें 16 माला का ये करना है, तो फिर 9 बजे के पहले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि अपनी माला हो जाए। और दूसरी बात ऐसी कि जैसा इन्होंने बताया कि सेवा का, तो फिर ऐसा दूसरे दिन सुबह अपने को जल्दी उठना है, इसलिए जैसे भी प्रोग्राम था तो अपन निकल जाते थे। पर अभी ऐसी एक भावना होती है कि कुछ सेवा होना चाहिए, तो सर्विंग सेवा है या कुछ, तो वहाँ जाके आदमी देखता है कि भाई 10 मिनट की सेवा हो तो साधना कार्ड में भरने के लिए काम नहीं।
ओके, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि खाली साधना कार्ड में भरने के लिए सेवा मत करो, उसको हृदय में भरना है हमको, ताकि वो नेचुरली। हाँ, शुरुआत में तो ये थोड़ा कॉन्शियसनेस रहेगा कि हाँ साधना कार्ड में भरना है इसलिए, परंतु वो नेचुरली सेवा भाव भी देखो। इसमें फर्क पड़ा प्रभु जी जो कहे कि पहले प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम के समय, प्रोग्राम से पहले मंदिर में आते हम लोग एक स्पेक्टेटर बनकर आकर अटेंड कर चले जाते, लेकिन अभी साधना कार्ड आने के बाद एक अलग दृष्टिकोण हो जाता है हर चीज को देखने का कि हाँ अभी क्या है कि मेरे ख्याल से ये अनुभव आपका रहेगा कि आप जहां कहीं पर भी कुछ सेवा चल रही है तो आप इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि क्या ये सेवा मैं कर सकता हूं या मैं करूं या मुझे करनी चाहिए, है ना? हो रहा है ये अनुभव, यही तो चाहिए कि इस हिसाब से हमारा कॉन्शियसनेस जब हम मंदिर में आए तो वो ऐसे अग्रसर होता रहे। और कोई एक्सपीरियंस किसी का?
काफी पॉजिटिव प्रेशर आया पहले तो 2-4 दिन प्रेशर लग रहा था, फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव बना। पहले सिर्फ वो कार्ड भरना है ये कॉन्शियसनेस से ऑनेस्टली पहला वीक गया हम दोनों का इनफैक्ट, और उसके बाद लगा कि नहीं इसमें फिर हमें हमारे जो खामियां थी वो दिखने लगी कि हमारा रीडिंग आज तो ब्लैंक गया, लेक्चर सिर्फ हार्डली 10 मिनट सुना वो भी काम करते हुए, पूरा क्वालिटी टाइम नहीं हुआ। तो काफ़ी सारी जो खामियां थी क्योंकि हमने उस पर चेक डाला अभी ये साधना कार्ड के थ्रू, तो काफ़ी सारे जो मिसिंग पॉइंट्स जो इतने दिन हमको लगा नहीं, हमको लगा हम मंदिर आ रहे हैं प्रोग्राम्स आ रहे हैं जपा समहाउ द अदर रात को 12 से पहले कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली यस आई डोंट माइंड कन्फेसिंग दिस, तो इसीलिए इसीलिए ये चेक। तो अभी एक पॉजिटिव प्रेशर आया, इसकी वजह से काफी मेरी बहुत सारी वीकनेस बाहर आई, और वो जो ब्लैंक जा रहे थे स्पेशली, तो लगा कि ये हम कर नहीं रहे, तो इस पे थोड़ा हमें ये इंटरेस्ट बढ़ाना है और ये करना है।
तो ब्लैंक बुलेट्स में गन पाउडर आ गया।
तो वीकनेसेस बाहर आई काफी सारी कि हम कहां पे मिस हो रहे।
मुझे काफी प्रभु जी जाके कहे कि हमारे घर का टीवी बंद हो गया है, पहले जो चलता था एक एक दो दो घंटा रात को वो सब टीवी बंद हो गया। तो कुछ उसके बारे में एक्सपीरियंसेस किसी के हैं तो हिम्मत है तो शेयर कर लीजिए। यस राहुल भगत प्रभु, माइक।
हमें भी बहुत सारे
टीवी चैनल वाले सोचेंगे इधर आके धरना देंगे, ये जागृति के कार्यक्रम हमारे प्रोग्राम बंद करा रहे हैं।
हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टफेल्ट थैंक्स फॉर साधना कार्ड, और स्पेशली ये जो पॉइंट आपको मैंने बोला,
प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टफेल्ट थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग साधना कार्ड।
थैंक यू, काफी सारी डिसिप्लिन आ गई।
okay.
और चूंकि टू द पॉइंट, मतलब कैसा कि पहले बहुत डर लगा कि ये, मतलब पहले तो लाइफ पार्टनर हो या घर के कोई मेंबर हो उसने भी साधना कार्ड भरना या देखना है उसका डर था, और बाद में इसमें इतना कॉन्शियसनेस बढ़ गया कि वो साधना कार्ड आप देखेंगे, तो इसलिए काफी अपने आप ही इतना डिसिप्लिन आ गया। और ये जो टीवी का मामला है, तो मेरा वैसे तो इतना होता नहीं है, पर एक वीक पॉइंट था मेरा अभी बीच बीच में, थोड़ा सा शुरू हो गया था कि घर में चालू रहता है तो अपने काम करते करते मैं ज्यादा करके मैं दूसरे रूम में रहता हूँ, पर कुछ क्रिकेट का अंश हो ना तो मैं रुक जाता था, भले वो 2 मिनट हो या 10 मिनट हो। तो मेरी बच्ची को वो मालूम है कि ये कहीं नहीं पर ये इधर अटक जाएंगे, तो उसने बीच में जानबूझ के वो टीवी थोड़ा सा लगाया और पापा बोले आईपीएल शुरू हो रहा है अभी, और मैं देखा ही नहीं उस तरफ, तो उसको वो समझ में नहीं आ रहा था कि इतना, मतलब ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम था कि कहीं ना कहीं सफेद इस पे दाग कौन सा है तो ये क्रिकेट का है, तो वो भी ये बंदा कुछ कर रहा है। बोला नहीं बेटा ये देख, मैं रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे जैसा अभी भर रहा हूँ उसको बोल दिया, उसमें लिखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से बोला अच्छा पापा। तो और ये सिर्फ मुझ में नहीं, तो इनडायरेक्टली उन पे भी असर हुआ।
गुड गुड गुड, हरी बोल। मतलब इंडिया में आईपीएल क्रिकेट का सैक्रिफाइस करना, ये सत्युग में बड़े बड़े महायोगी जब 60-60 हजार साल गुफाओं में जाके तपस्या करते थे उसके बराबर है, तो इट्स कमेंडेबल।
एक्चुअली ये याद दिला रहा था मेरे उन दिनों की, जो 10-12 साल कम से कम हमने टीवी निकाल के रख दिया था घर में से, अभी किसी कारणवश हम तो एक्सक्यूजेस देते हैं कि बच्चों की वजह से लगा रहे हैं या जो भी है, तो उस पे भी अभी चेक आ गया है।
हरी वो,
थैंक यू,
हरी वो, वेरी नाइस। एक मैं बताता हूँ, हमारे एक बॉम्बे के डिवोटी, उन्होंने एक अच्छा आइडिया किया। उन्होंने क्या किया, ये जो बच्चों का आप रीजन दे रहे हैं ना, तो उन्होंने टीवी और केबल पूरा कनेक्टेड रखा, लेकिन उसका बिल नहीं भर दिया गया, केबल वाले को बिल नहीं भरा, तो अपने आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देता ना, तो बच्चे को बताते गए कि कनेक्ट ही नहीं हो रहा, टेलीकास्ट ही नहीं है, तो बेचारा बच्चा ट्राई कर रहा है ये चैनल वो चैनल, तो फाइनली बच्चे ने भी गिव अप कर दिया, और उन्होंने थोड़ा डिस्क्रीटली वो बच्चे को डायरेक्टली नहीं बोलते हुए फाइनली उसको टीवी नहीं दिखाना है, वो उन्होंने हासिल कर लिया। तो एक आइडिया इन केस यू वांट टू ट्राई, एनीथिंग एल्स, साधना कार्ड,
हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये साधना कार्ड वाज लाइक अ मिरर,
थोड़ा जोर से बोलेंगे,
हरे कृष्णा। साधना कार्ड वॉज लाइक अ मिरर, तो हमको अपना इमेज दिख रहा था, तो बहुत विच वॉज वेरी डेंजरस सिचुएशन।
हाँ, इसलिए हम ये दिए थे ताकि उसमें आप देखने के बाद थोड़ा श्रृंगार कीजिए। मिरर को देखने के बाद श्रृंगार करते हैं ना।
और पहला दिन तो गौर पूर्णिमा था, तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही था, लेकिन सेकेंड डे से वो 12 के बाद 2-3 दिन ऐसा हुआ तो देख के डर लगने लगा, तो उसके बाद वो क्योंकि दिख रहा था तो फिर सुधार आया ऐसा। थैंक यू,
अरे वाह। तो साधना कार्ड तो अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो देखने के बाद फिर थोड़े रिव्यूज इन प्रिंसिपल मैं दूंगा विदाउट फैक्ट्स फिगर्स एंड नेम्स, कि कौन से एरियाज में यदि आपको लग रहा है तो आप वो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं उसका रिव्यू करके आपको उसका एक फीडबैक दूंगा साधना कार्ड का। तो बेसिक प्रिंसिपल मॉर्निंग मंगल आरती अटेंडेंस और ये 15 दिन साधना कार्ड भरने का यही है कि आप इस फोरम के कॉन्शियसनेस में हर समय रहो। इसका मेन पर्पस क्या है कि हाँ आप एक किसी आर्मी के मेंबर हो, इसको अगर ये मैं नाम दू तो किसी सेना के मेंबर हो, और आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे बाकी सेनानी एक सेना के अपने अपने जगहों पर, जैसे कि यदि डिफेंस के आप लो, आर्मी लो या एयरफोर्स लो, तो उनके यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया, और ऑल ओवर इंडिया हजारों सैकड़ों सैनिक एक साथ रोज ट्रेनिंग अपना वो कर रहे हैं, ताकि जब वॉर आएगा तो सब एक साथ आएंगे। तो वो कॉन्शियसनेस कि ये पूरा एक फोरम, ये पूरी एक सेना, ये कॉन्शियसनेस में कि हाँ सभी लोग इस समय एक साथ साधना कार्ड भरने के लिए अपनी साधना को सुधार रहे हैं। और जनरली होता क्या, बाकी प्रोग्राम्स में जैसे कि हम गीतामृत में आए तो आए, अटेंड किया, चले गए, और फिर हम भूल जाते हैं कि अगले गीतामृत तक याद ही नहीं रहता है, अच्छा बुधवार आ गया अभी। लेकिन ये साधना कार्ड और एवरी संडे मॉर्निंग प्रोग्राम के पीछे उद्देश्य ये है कि हम हर दिन इस कॉन्शियसनेस में रहें, आई एम पार्ट ऑफ दिस फोरम एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ ऑनरेबल वे विच विल प्लीज वैष्णवस, गुरु एंड गौरांग, दिस इज अ प्रिंसिपल। तो अभी हम डायरेक्टली जाएंगे, क्योंकि ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया पिछली बार जहां पर हम पहुंचे थे। ये हमारा लास्ट स्लाइड रिस्क के ऊपर, याद है? तो रिस्क ये आपके अनुसार क्या जरूरी है या ऑप्शनल है? कैन यू एलैबोरेट माइक? एक कोई अगर माइक को, माइक की सेवा कर सकता ऑन करके आप दीजिए।
बिजनेस में एक टर्म है प्रभु, नो रिटर्न्स टिल यू टेक द रिस्क, जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा, एक। और दूसरा वो अनअवॉइडेबल है, कोई बोलेगा कि रिस्क नहीं लेके चलता है तो मेरे लिए अच्छा, बट इट इज अनअवॉइडेबल बिकॉज एवरी पदम पदम यद विपदम, आइदर स्पिरिचुअली वी टेक इट और मटेरियल इट इज गोइंग टू कम।
डू यू ऑल नो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क वी हैव टेकन ऑलरेडी? Even if one may not agree,
we have come to material world.
Yeah. Coming to this material world, we have taken the greatest risk. It's like entering into an epidemic area. Mahamari jahan phaili hai, wahan par jaan boojhte, jaise hamare Narottam Das Thakur gaate hain, janiya shuniya vishak hainu. जान बूझ के पता है कि इसके अंदर विष है। राधानाथ महाराज, मुझे याद है, बेलगाम में एक लेक्चर दे रहे थे, और बहुत उनकी आदत है कोई एक एग्जाम्पल को लेके बहुत ग्राफिकली उसको डिस्क्राइब करते, तो उन्होंने लिम्का का एग्जाम्पल लिया। गर्मी का मौसम चल रहा था इस प्रकार से, तो उन्होंने लिम्का का एग्जाम्पल दिया कि कोई आपको गर्मी, झुलसती गर्मी में आपको ठंडा ठंडा लिमका ला कर देगा, और देखने मात्र से आपको कितना उसमें उत्साह आएगा उसको पीने का। पता नहीं आजकल लिमका आता है कि नहीं आता, उस जमाने में लिमका महाराज जानते थे, फेमस था। तो आपके सामने लिया लाया वो, और फिर आप हाथ में लिए, और कई बार होता है ना हम हाथ में लेकर पढ़ते हैं लेबल पर क्या है, पीने से पहले पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है लिमका 99%, 1% potassium cyanide. तो महाराज ये प्रश्न पूछ रहे थे, हाउ मेनी ऑफ यू विल नाउ बी ईगर और टेक द रिस्क, महाराज ने वर्ड यूज किया, हाउ मेनी ऑफ यू विल टेक द रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग दैट कूल लिमका। और महाराज आगे कहे, मेनी ऑफ अस वी हैव डन दैट इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट देयर इज 1% ऑफ पोटेशियम साइनाइड। सबको पता है पोटेशियम साइनाइड क्या है? तो महाराज उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब आप पीना शुरू करते हो तो हो सकता है कि जहर का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि खाली 1% है, 99% लिमका है। तो जब पियोगे तो इनिशियली गले के नीचे जब वो फिजी ड्रिंक उतरेगा तो आप बोलोगे कहां है पॉइजन, दिस मटीरियल लाइफ। मटीरियल लाइफ मींस बिफोर पोटेशियम साइनाइड स्टार्ट्स एक्टिंग द इंटरिम स्टेज, वो जो बीच की स्थिति है जहां पर अभी गले के नीचे वो लिमका उतरते हुए आपको आनंद दे रहा है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए इतना बड़ा रिस्क हम लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारे अंदर रिस्क लेने का पोटेंशियल है, इतनी बड़ी रिस्क हमने ले ली गोलोक वृंदावन छोड़कर यहां आ गए, और यहां आने के बाद ये एक ऐसा कैद खाना है कि यहां से निकलना आप देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये कार्ड भरो उसके अंदर इतने कॉलम, इतना डिसिप्लिन, अनुशासन, चार नियम, 64 अंग, 9, इतने सारे सब कुछ पालन करने के बाद भी डाउट है कि एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये एक गलती की सजा देखिए हम कितने जन्मों से भुगत रहे हैं। अब हाँ, जब यूज में नहीं तो उसको बंद कर दो। तो लास्ट टाइम कुछ डिवोटीज शेयर करना बाकी रह गए थे, हमारा टाइम अप हो गया था। रिस्क कुछ डिवोटीज ने शेयर किया था कि उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के, चाहे वो इस्कॉन में आने से पहले रिस्क लिए, और हम ये जानना चाह रहे थे कि ये है हमारे अंदर, ये एलिमेंट हमारे अंदर है कि नहीं, रिस्क लेने का एलिमेंट है कि नहीं, और फिर उसको हम धीरे धीरे डाउटेल कैसे करें, ये डिस्कशन हमको करना है। तो कोई बाकी रह गया था पिछली बार? यदि आपको याद आ रहा है कि आपने कुछ खतरा मोल लिया, आपने
यस हाँ प्रभु, मैंने मटेरियल लाइफ में जैसे मेरा परमानेंट जॉब था वो छोड़ के बिजनेस चालू किया, इस अभी 40 की उम्र,
बड़ा रिस्क है
वो बिजनेस भी, ऐसा कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है वो फील्ड क्या है क्या है, मार्केट कैसा रहेगा, कुछ भी नहीं था। उसमें दो रीजन थे, एक मटेरियल था और दूसरा मैं संडे भागवतम तो मिस कर रहा था, और मेरी वाइफ मुझे हर टाइम बताती कि ऐसे ऐसे आज का भागवतम हुआ, तो एक बहुत बड़ा वो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, वो दो रीजन्स थे मेन, उसके लिए मैंने उतना रिस्क ले लिया।
तो अभी कैसे सब कैसे चल रहा
है? सब कुछ ठीक चल रहा है।
हाँ, ये एक आजकल जॉब सिनेरियो को देखते हुए बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, आपका एस्टैब्लिश जॉब छोड़कर, जैसे मुझे खुद याद है कि ये जब हमारे प्रभु जी आ गए उन्होंने भी बिजनेस चालू किया, दुबई छोड़कर आए यहाँ पर। प्रभु जी थोड़ा आपके बिजनेस के बारे में बताइए, आप सही टाइम पे एंट्री किए। मैं हाल ही में इनके पास गया था तो प्रभु जी बता रहे थे कि दुबई छोड़कर आए और उसके बाद में फिर उन्होंने कुछ जॉब भी किया, और फिर अभी उन्होंने ये क्या है, किड्स वेयर बच्चों के कपड़े, इनका बिजनेस चालू किया है। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस?
एक्चुअली प्रभु जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज थिंकिंग, लेकिन सब लोग भी मुझे बोलते थे कि आपको घर से पैसे निकाल के खाने पड़ेंगे, इवन जनरली बिजनेस के हिसाब से। तो मुझे मदन गोपाल पे फेथ था, जो भी होगा ठीक होगा जैसे भी होगा, लेकिन अभी ऐसे पोजिशन है प्रभु जी क्या, मुझे अभी 7 बजे बंद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कस्टमर्स 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 तो परेशान हो जाता हूँ।
देखो आज आपको, भी आपको मदन गोपाल जी पे फेथ था, कस्टमर्स को आप पे फेथ है क्योंकि आप सिंधी है।
प्रभु जी बेसिकली सिंधी लोग की मेंटालिटी ऐसे है जितना लूट सको लूटो।
अरे वाह।
तो मैंने मदन गोपाल को एकदम सामने ही रखा था, मुझे लूटने का टेंशन यही नहीं, रहेगा क्योंकि सामने बैठे हैं ना। अरे
तो अभी देखो प्रभु जी ने भी रिस्क लिया, आपने दुबई में बिजनेस नहीं किया था ना?
नहीं प्रभु जी, जॉब करता था।
बिजनेस कभी किया आपने?
नहीं,
इसके पहले
और नहीं प्रभु जी, बाकी और सैलरी भी मतलब वहां पे 1-0 कम हो गई यहां पे, अगर जो जॉब किया था तो।
ओके ओके,
इट वाज अ ग्रेट रिस्क बट डिवोटीज का एसोसिएशन है उसके लिए।
हरि बोल।
हरि बोल प्रभु जी। आई आल्सो टुक रिस्क थ्राइस।
ओके,
या मतलब बिजनेस कर रहा था बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में, और बहुत बड़ा मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर दोस्त ने धोखा दे दिया। तो कुछ 21-22 साल का था, तो 4-5 लाख रुपए का कर्जा आ गया था, और ऐसा हो गया था कि हाँ शायद अब मुझे सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए।
ओपा।
या और फिर यहाँ आया, इस्कॉन से जुड़ा, उसके बाद भी रिस्क लेता गया, उसके बाद भी धोखे आए बहुत बार, और फिर जॉब की 15-20 हज़ार रुपए की जॉब, कहाँ पैसे, क्योंकि कर्जा इतना था, सबके देते देते थक गया था और बिल्कुल पैसा नहीं था। फिर भी मैंने बिजनेस में ही हाथ डाला, और सबने बोला कि एटलीस्ट 5-6 लाख जेब में होने चाहिए, पर सिर्फ 20 हज़ार, वो भी इधर उधर से उधार मांग कर शुरू किया, एंड गोइंग ग्रेट।
किस चीज का बिजनेस?
सर, पुछनाई डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश एंड माइंड पावर ट्रेनिंग। तो इट्स गोइंग ग्रेट।
Revo.
Thank you.
20,000 na?
Yeah.
Started from 20,000.
Yes, only 20,000.
Revo. तो मुझे भी याद है जब मैं जॉब छोड़ रहा था, तो जो मेरे दो बचपन के ख्वाब, एक तो प्रोफेशनल टेनिस, उस सर्किट में रहना, और फाइटर पायलट, और 22 साल की उम्र में ये दोनों ड्रीम्स फुलफिल एक साथ, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक साथ फुलफिल होंगे। मैंने ये सोचा था आइदर इसमें से कोई एक होगा, बट दोनों फुलफिल। और 22 साल की उम्र में आपके हाथ में सोने की थाली, और सोने की थाली में सब कुछ जो आपको चाहिए वो कुछ है, और वो सब फिर फेंक के आना। तो मैं श्रेय दूंगा राधानाथ महाराज उनको, भक्ति रसामृत महाराज की जो प्योरिटी उनकी, कि मुझ जैसे आसक्त व्यक्ति को वहां से निकाल लिया। तो रिस्क के मामले में ये भक्ति में आने से पहले मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। मैं बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड था बचपन से, और काफी मैं बुक्स पढ़ता था, और प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करता था कि अलग अलग प्रकार के इंसान, उनके साइकी क्या होते, मतलब बुक्स पढ़ने से ज्यादा इंटरेक्ट कर पता लगाना। मुझे याद है जब मैं हमारे एयरफोर्स टेनिस टीम में था, तो जस्ट जहां पर हमारे कोर्ट्स थे, कुछ 5 ग्रास कोर्ट्स थे और 2 क्ले कोर्ट्स थे, तो बहुत लंबा वो प्रिमाइसिस था टेनिस का, और क्योंकि वो पालम एरिया में, तो उसके बगल में गुड़गांव, अगर आपको पता है तो थोड़ा गांव एरिया शुरू होता है हरियाणा, तो उसके बगल में, उसके पीछे एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे, और उस एग्रीकल्चरल फील्ड में एक व्यक्ति फार्मर हरियाणवी, उसका नाम था बिरजू, एब्सोल्युटली दुनिया से अलग, उसको कुछ पता नहीं कि ये एयरफोर्स किस चिड़िया का नाम है, टेनिस भूल जाओ, टोटल इलिटरेट, ओनली डूइंग फार्मिंग ऑल थ्रू हिज लाइफ. और वो कहीं बाहर भी, उसका एक छोटा सा झोपड़ा था उस फील्ड्स में, जो भी उसको उसके जीवन यापन के लिए वहीं पे उगा के वो यूज करता था. तो मैं उसके साथ बैठकर मैं बहुत सी चीजें जानने की कोशिश करता था कि एक व्यक्ति जो पूरा अनपढ़ गंवार है, जिसको हम जिसको कहते हैं सिटी लाइफ वेल वर्स्ड विथ मॉडर्न अफेयर्स, बिल्कुल कुछ पता नहीं उसको. वो मेरे रैकेट को देख के पूछता था कि ये वो जलेबी तलने का झरिया है क्या. इतना ज्ञानी था वो इस मामले. तो मैं उसके साथ बहुत समय बिताता था जानने के लिए कि यदि मैं किसी कारणवश ऐसा जीवन जीऊं तो किस प्रकार का जीवन होगा. तो मुझको बहुत इंटरेस्ट ये सब चीजों में था, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट माइंडसेट्स. काफी रिस्की होता है ये एक्सप्लोरिंग डिफरेंट माइंडसेट्स, क्योंकि बहुत अतरंगी लोग भी मिल जाते हैं जिनके माइंडसेट्स थोड़े साइकोज होते हैं. एक्चुअली जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो उस दौरान, क्योंकि वो रिवील नहीं कर पा रहा था मैं कारण छोड़ने का, तो एक साइकैट्रिस्ट को मुझे रेफर किया गया था. तो साइकैट्रिस्ट ने उसके एनालिसिस में लिख दिया था, दिस पर्सन इज ओके, ही इज नॉट अ साइकैट्रिक केस, बट ही हैज अ सिंड्रोम कॉल्ड रिस्क एडिक्शन सिंड्रोम. दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू रिस्क. तो एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, मैं अक्सर जब भी किसी भिखारी को देखता तो मुझे हाँ थोड़ी दया आती उसके प्रति, लेकिन उससे ज्यादा मैं उसके बारे में सोच विचार करता कि जो अलग अलग टाइप्स के भिखारी होते हैं उनमें भी कैटेगरीज होते हैं. तो मैं कई बार उनको स्टडी करता था कि इनका टिपिकल डे कैसा रहता होगा. तो मैंने कुछ भिखारियों से पूछा, काइंड ऑफ इंटरव्यू, कि तुम कितने बजे उठते हो, यहां भीख मांगने के लिए कितने बजे बैठते हो, कितना मिलता है दिन में, कैसे कैसे तुमको कस्टमर्स आते हैं भीख देने वाले. तो कई बार कई जो होते थे वो डिस्कस नहीं करते थे, वो लोग उस लेवल के होते ही नहीं थे, डिस्कशन बियॉन्ड डिस्कशन होते कई लोग, लेकिन बताते थे मुझे कि क्या उनको, मतलब कोई है नहीं, बोर हो रहे हैं, कोई तो आया पूछने के लिए. हाँ मैं देता भी था उनको, तो बोलते थे, ज्यादा अच्छी से बोलते थे वो. तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग हंसोगे इसके ऊपर, मैं भी हंस रहा हूं. मैंने सोचा कि Why not live like a beggar? एक ये एक्सपीरियंस करके क्यों ना देखा जाए. तो मैंने 3 दिन की छुट्टी ली. हाँ मैंने बाकायदा 3 days कैजुअल लीव अप्लाई किया, मैंने 3 दिन की छुट्टी ली. और 3 दिन की छुट्टी लेने का पर्पज एक ही था कि मुझे कहीं नहीं जाना, घर नहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है, मुझे अब 3 दिन एक भिखारी का जीवन जी के देखना है कि वो किस दौर से गुजरते, मतलब वो एक्चुअल एक्सपीरियंस लेने के लिए, खाली पूछने से नहीं हो रहा था. तो मैं डिसाइड ये किया, अब ये रिस्क था बहुत बड़ा, रिस्क के कनेक्शन में मैं सुना रहा हूं. मैंने डिसाइड ये किया कि मेरे शरीर पे जो कपड़े हैं उसके अलावा कुछ नहीं लेना है, पैसे नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, बिस्तर नहीं, कटोरा भी नहीं, खाली शरीर पे कपड़े, चप्पल भी नहीं, नंगे पैर। आप लोग सोच रहे होंगे सही में साइको आदमी है ये। तो मैं निकला निजामुद्दीन स्टेशन की ओर पहले, और मैंने देखा कि आधा दिन बीत गया तो कोई मुझे भीखी नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे थे। तो फिर निजामुद्दीन स्टेशन पर मैंने एक एक्चुअल जो टिपिकल जिसको बोलेंगे ऑथराइज्ड बोनाफाइड भिखारी दिखता है जैसा, उसको मैंने पकड़ा और उसको मैंने कहा कि एक्सचेंज। तो पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ, मजाक उड़ा रहा है ऐसे समझा उसने, क्योंकि वो लैकोस्टे का टी शर्ट था मेरा, लिवाइस का जीन्स था। तो ब्रांडेड थे वो सब, तो मैं सोचा है मैंने गलती की, ये ब्रांडेड कपड़े पहन के कौन भीग देगा मेरे को। तो फिर सुलभ शौचालय में उसको लेके गया और एक्सचेंज किया हमने कपड़े। और उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ भिकमंगे का। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा तीन दिन में केवल 5 रुपए की भीख मैं कमा सका, केवल 5 रुपए। मेरे कुछ 3.5 किलो से 4 किलो वजन कम हो गया, कोई ठिकाना नहीं कहां खाने को क्या मिलेगा, सोने को कहां। और उसमें से भी हुआ क्या कि एक्चुअली थोड़े ज्यादा थे मेरे को दिख रहे थे, तो एक मतलब घूमते हुए थक हार के कभी मैं सो गया तो कुछ उसमें से चोरी भी हो गए थे पैसे। लेकिन फाइनली 3 दिन के बाद जो मेरा रियलाइजेशन था वो ये था, आज दिन तक वो मुझे 3 दिन याद आते हैं, जब आपको कोई ठिकाना नहीं कहां पर आपको क्या मिलेगा खाने के लिए, कहां सोने मिलेगा, कोई शेल्टर नहीं। तो जब आपको इतनी आसानी से सब उपलब्ध होते हैं, हाउ मच वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दोज 3 days ऑफ लिविंग लाइक अ बेगर, माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सिंपल थिंग्स इन लाइफ इंक्रीज्ड, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एक और मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया था, आई ट्राइड टू लिव लाइक अ ब्लाइंड मैन, व्हाट इट टेक्स टू लिव लाइक अ ब्लाइंड मैन। क्योंकि एक जन्म से व्यक्ति अंधे थे, और ये हमारे इधर एयरफोर्स में वो जो चेयर्स होते हैं ना, नायलॉन थ्रेड की चेयर्स, वो चेयर्स बनाते थे, बॉर्न ब्लाइंड, लेकिन इतना परफेक्ट सिमेट्री में वो चेयर्स में वो नायलॉन थ्रेड्स पिरो के बनाते थे। तो उनको देखकर, और केवल करेंसी नोट को छू कर बता देते थे डिनोमिनेशन क्या है इसका, जस्ट करेंसी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया उनको, मैंने दिया 10 रुपए का नोट, देकर बोला 50 रुपए, बोले नहीं ये 10 रुपए। तो मुझे काफी फैसिनेशन हुआ कि ये व्यक्ति जो जन्म से इसने सूर्य की किरण नहीं देखी, रंग किसे कहते हैं पता नहीं इसको, हम कितने आसानी से ये सारी चीजों को ले लेते हैं। तो मैंने फिर से एक दिन की छुट्टी ली और मैंने अपने कमरे में, बड़ा बड़ा कमरा था, मैंने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड किया गांधारी की तरह। लेकिन मैं 12 घंटे रह पाया वैसे, उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो रहा था जो भी एक्टिविटीज करना है ब्लाइंड फोल्ड, एज इफ यू आर ब्लाइंड। उसके बाद मेरा रियलाइजेशन यही रहा, जस्ट दिस आई साइट हाउ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। रोज सुबह हम इस आशा में अपनी आंख खोलते हैं कि सब कुछ दिखाई देने वाला है मुझे, रात को सोते समय अलार्म लगाते हैं इस आशा में कि कल सुबह आंख खुलेगी अलार्म बंद करने के लिए। हाउ मच कॉन्फिडेंस वी हैव, but how much we take it for granted, even something like our eyesight. तो मैं ये शेयर इसलिए करना चाह रहा था आपसे कि कई बार ऐसे जो इसको आप रिस्क बोल सकते हो या फिर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ, यदि इसका आउटकम आपके कृष्ण कॉन्शियसनेस में हेल्प कर रहा है तो ये हम लोग अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं यहां पर. क्योंकि इंद्रिय भोग को छोड़ना इतने जन्मों के बाद ये भी एक रिस्क है, क्योंकि इतने जन्मों से हम यहां पर एक सेटल्ड सो कॉल्ड सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं भौतिक संसार में, तो यहां से अनसेटल होकर क्यों हमको इतनी मुश्किलें आ रही हैं ये साधना भक्ति में. इतने हमको लगता है कि पता नहीं कितने कष्ट उठाकर हमको ये कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला है, ऐसे लगता है ना कि ये फास्टिंग एकादशी निर्जल जन्माष्टमी में गौर पूर्णिमा में फिर बाद में रोज 16 माला जल्दी उठना चार नियम स्ट्रिक्टनेस प्यूरिटी ऑनेस्टी सबके साथ ठीक से बनाकर रखना बहुत मुश्किल होते जा रहा है. ये क्यों होते जा रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को इतना सेटल बना लिया है इसके ऑपोजिट लाइफस्टाइल में, जबकि ये हमारा नेचुरल होना चाहिए सब लाइफस्टाइल. इसलिए उसको छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है, रिस्क लगता है हमको. इनिशियली जब हमको बोला जाता है कि आप जैसे हम डिस्कस कर रहे थे प्याज लहसुन और चाय कॉफी, अभी इंडिया में चाय छोड़ना लोग 10 बार क्यों सोचते हैं, इतना बड़ा रिस्क. भगवान भी हंसते होंगे इसको रिस्क बोल रहा है ये. मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हमको इतना आसान लग रहा है होपफुली, लेकिन इनिशियली ये सारी चीजें अभी हम लोग देवलाली में चर्चा कर रहे थे तो देवलाली में ये पॉइंट आया, हमारे ब्रह्मचारी क्लास में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये हर समय प्याज लहसुन और चाय कॉफी को लेके घर में जब आप नए नए इस्कॉन में जाकर घर में बताते हो ना कि आज से चाय कॉफी बंद प्याज लहसुन बंद, तो क्यों बवाल खड़े होते हैं, कभी इसके बारे में सोचा आपने? तो एक हमारे डिवोटी बोल रहे थे इसके बारे में कि कैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस्कॉन में आने से पहले और इस्कॉन में आने के बाद आपके जीवन में उत्पात कितने अलग अलग प्रकार के आए. तो वो एक डिवोटी बोल रहा था सबसे पहला उत्पात यही आया कि प्याज लहसुन जब मैंने छोड़ दिया तो सारे घर वाले आ गए और पूछने लगे तो तेरे लिए अलग बनेगा, अभी तेरे लिए कौन बनाएगा अलग. तो मैं बोल रहा था कि इससे क्या साबित हुआ कि अब तक प्रेम किसके साथ था, कि ये परिवार वाला जिसको इतने सालों से तुम घर पे रखे हो उसके लिए अलग नहीं बना सकते, मतलब अब तक प्रेम प्याज लहसुन से ही था कि उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने दरार खड़ी कर दी. ऐसे कहां किचन में पड़ा रहता था पहले, लेकिन जैसे ही उसको बंद किया खाना तो उसने कितनी दरारें ला दी. तो मैंने उनको कहा कि एक एक्सपेरिमेंट आप कीजिए, आप घर पे जाके बोलिए कल से मैं रबड़ी नहीं खाऊंगा, कोई नहीं कुछ बोलने वाला, मत खा भाई हमारा क्या जाता है, मत खा, वैसे भी खर्चे वाली चीज है तो बाकी कोई भी आइटम आप लो, आप घर में जाके बोलो मैं रबड़ी नहीं खाऊंगा, मैं ना कल से एप्पल नहीं खाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये प्याज लहसुन को लेकर इतने बड़े बड़े युद्ध क्यों लड़े जाते हैं? क्योंकि उसका कनेक्शन भगवान से है. प्रश्न ये नहीं है कि प्याज लहसुन क्यों छोड़ रहे हैं, प्रश्न ये है किसके लिए छोड़ रहे हैं. नेचुरल एनवी फॉर कृष्णा कम्स आउट, सबके अंदर जो द्वेष है ना मालूम नहीं है उनको, बाहर आता है. तो मैं ये किस्सा बता रहा था, बॉम्बे के हमारे एक डिवोटी हैं, वो मेरे को पर्सनली बता रहे थे किस्सा कि उनकी वाइफ सीरियस हो गई कृष्ण कॉन्शियसनेस. और जनरली होता है कि अगर वाइफ सीरियस हो जाए, हस्बैंड थोड़ा देरी से सीरियस बन रहा है, तो एक मेल ईगो होता है, हस्बैंड्स का एक मेल ईगो होता है कि मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा शुद्ध कैसे बन सकती. तो कई बार झगड़े घर में दाम्पत्य जीवन में क्यों नहीं होते, क्योंकि वो भी पतित मैं भी पतित, तो फिर ज्यादा ईगो क्लैशेस नहीं होंगे. लेकिन अगर एक ज्यादा प्योर होने लग जाए तो फिर दूसरे को क्या होता है, गिल्टी कॉन्शियस होता है ना, सुना ये वर्ड गिल्टी कॉन्शियस. तो ये हस्बैंड बोल रहे थे कि जैसे ही उनके वाइफ ने अब ये सब छोड़ दिया, प्याज लहसुन नहीं, चाय कॉफी नहीं, तो इनको सबसे पहले चिंता हुई कि अभी फिर मेरी जो इमेज है वो थोड़ी गिरती जाएगी इसके सामने, मेरी पोजीशन का क्या होगा एज अ हस्बैंड. तो अभी दुविधा ये थी इनकी कि चाय छोड़नी तो नहीं है, क्योंकि चाय इतनी अच्छी लगती है, तो चाय छोड़नी नहीं है. तो एक तरफ चाय नहीं छोड़नी और दूसरी तरफ अपने प्यूरिटी के सो कॉल्ड इमेज को मेंटेन करना है. तो उन्होंने एक नुस्खा निकाला, नुस्खा ये अपनी वाइफ को कहा कि ऐसा करते हैं, ये जो चाय पत्ती है बरनी के अंदर, ये जब खत्म हो जाएगी बरनी फिर नहीं ले लाएंगे, नेक्स्ट उसके बाद लाएंगे नहीं लॉट. और भरी हुई थी बरनी, उन्होंने कहा कम से कम 2 महीने की तो तसल्ली है. तो उनका एक थोड़ा प्लान था कि ये बरनी को मैं खत्म नहीं होने दूंगा, ये उनका एक सीक्रेटिव क्लैंडेस्टाइन प्लान था कि इसको मैं खत्म नहीं होना, भरता रहूंगा बरनी को. और उसके ऊपर वाइफ ने कह दिया ठीक है, ये कंडीशन तुमने रख दिया है तो तुमको ही बनानी चाहे तुम्हारी. तो अब इनके लिए और फायदा हो गया, पूरा भरने का कंट्रोल इनके पास, तो भरते रहेंगे, इसको खाली नहीं होने देंगे. तो ये सच्ची घटना है, पहले दिन गए किचन में खुद की चाय बनाने के लिए, भरनी खोली, चम्मच डाली, चम्मच से चाय पत्ती निकाल रहे थे, पूरी भरनी नीचे गिर गई, एक ही झटके में भरनी खाली. तो वो भगवान को चीट करने जा रहे थे और फिर वो कांच की बरनी थी, सब कांच के उसके अंदर मिक्स हो गए, तो वो यूज भी नहीं कर सकते थे वो चाय पत्ती. तो तुरंत वाइफ आई, क्या हुआ. तो वाइफ ने कहा देखो खाली हो गई ना, तुम्हारा कंडीशन क्या था कि बरनी खाली होने के बाद. तो वो अपना रियलाइजेशन बता रहे थे कि प्रभु जी कि मैं अलग अलग तरीके से सोच रहा था कि कैसे छोड़ू कि नहीं छोड़ू, लेकिन भगवान ने जब ठान लिया तो भगवान ने सही तरीके से मुझे सबक दिया और छुड़ा दिया. तो अभी हाँ, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सब्जेक्टिवली हमारे जीवन में हम क्या सैक्रिफाइस करते हैं वो रिस्क फैक्टर बन जाता है. किसी के लिए चाय कॉफी प्याज लहसुन 4 नियम कुछ भी नहीं होगा. मतलब मैं पर्सनली बोलूं तो बचपन से हम लोग ये 4 नियम तो फॉलो कर रहे थे, हाँ चाय कॉफी प्याज लहसुन, लेकिन उसमें कोई इतना ज्यादा घुसे हुए नहीं थे कि उसके बिना दरिद्र जीवन, उस प्रकार का आसक्ति नहीं था. तो फिर जब बोला गया तो वो एक दिन में कुछ उसमें ट्रांजिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ा. लेकिन फिर मुझे समझ में आया हमारी फैमिली के एक मेंबर, उनको अब तक उनकी चाय नहीं छूटी. तो समझ में आया कि उस व्यक्ति के लिए वो फैक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको हमको उसको कंसिडर करना चाहिए कि किसी फैमिली मेंबर के लिए कौन सा फैक्टर रिस्क फैक्टर रहेगा उसका। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने इतनी आसानी से छोड़ दिया, तुम क्यों नहीं छोड़ रहे। अरे भाई वो अपना पूरे कितने जन्मों का बैगेज लेके घूम रहा है, उसको कंसिडर करो। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद वो अमेरिका में हिप्पीज के साथ डील कर रहे थे और उनको प्रभुपाद ने धीरे 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 प्रसाद खिलाकर धीरे धीरे जो भी कुछ कहा, क्या क्या छोड़ा है, LSD, कोकेन, मैरिवाना, हम लोग चाय कॉफी में अटके हुए हैं, ये सब तो सुने भी नहीं होंगे, इतने हैवी हैवी ड्रग्स, ये सब छुड़ाकर श्रील प्रभुपाद ने उनको बताया, सबसे पहले उनको ये समझाया कि भाई भौतिक संसार में रहना कितना बड़ा रिस्क है, इस संसार में रहना कितना बड़ा रिस्क है, जब ये हमें रियलाइजेशन आ जाएगा तो यहां जो कुछ छोड़ने के लिए आवश्यक है वो रिस्क लगेगा ही नहीं। इसलिए आपको एक इंटरेस्टिंग इमेज दिखाना चाहते हैं और आपके अभी कुछ व्यूज इस इमेज को देखते हुए, सबको दिखाई दे रहा है ना, आई एम नॉट कमिंग इन द वे, तो आपके कुछ व्यूज इस इमेज को देखकर क्या समझ रहे हो आप इन कनेक्शन विथ ऑफ कोर्स यू नो द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग। माइक, हाँ,
कंफर्टेबल रिस्क,
कंफर्टेबल रिस्क, तो मीन्स लाइक कैन यू इलैबोरेट और डू यू हैव एनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंफर्टेबल रिस्क आइदर इन योर लाइफ और एनीवन्स लाइफ। जैसे होता है ना कांदा भजी के बदले कैबेज भजी, कंफर्टेबल रिस्क है, तो वो पहले बना के दे दो फिर जरूरत नहीं इसकी, तो तकिया नीचे। जैसे यहां पे
प्रभु जी मुझे लगता है हमारा शादी ये इस तरह से यू नो इट वॉज कृष्णाज प्रोटेक्शन ऑलरेडी देयर एंड वी टुक अ बिग रिस्क, लुक्स वाइज बोथ ऑफ अस वेर टोटली डिफरेंट, एजुकेशन बैकग्राउंड वाइज वी वेर टोटली डिफरेंट, और कृष्ण कॉन्शियसनेस ये एक ही धागा उसके लिए जो बेसिस इसका, तो इट वॉज अ बिग रिस्क, यानी जो समाज के जो भी क्राइटेरियाज रहते हैं एक शादी होने के लिए उसके एग्जैक्टली अपोजिट तब सब चीजें थी, द गर्ल शुड बी वेरी गुड लुकिंग एंड प्रॉपर एंड दिस एंड दैट, उसके एकदम अपोजिट था, और इनका सेटलमेंट बाकी था तब, तो यू नो इट वॉज टोटली opposite of what you know the world would think of, so it was a big risk for us, but aaj bhi hum log bolte hai ki the biggest and the greatest thing what Krishna did for us is arranged this relationship for us, because so, we did,
what is the pillow,
pillow is the Krishna's protection, ki wo jo period tha jab you know let me tell you it was not simple, उस इन प्रभु जी का सेटलमेंट पीरियड जो था और मेरा भी जो यू नो ओवरऑल ये था कि लुक्स वाइज भी समझो कैसे इसको मैं ले पाऊंगी आगे जाके, लोग कैसे बोलेंगे, एंड देर हैव बीन कमेंट्स लाइक दैट वेयर समवन हैज सेड दैट ये आपके लड़के है क्या या आपकी ये मदर है क्या, यू नो दैट वॉज अ कमेंट फ्रॉम समवन हु वाज इन द यू नो वर्किंग इन अ बैंक, तो उस चीज को इस तरह से लेना, एंड देन द प्रोटेक्शन फ्रॉम कृष्णा वॉज दैट बिकॉज यू डिड इट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस आई विल प्रोटेक्ट यू, एवरीथिंग गॉट बैलेंस्ड। तो इनफैक्ट हमारे जो क्लोज वंस है उनको ज्यादा टेंशन था हमसे. हम लोग कंपैरेटिवली बिंदास थे बिकॉज वी न्यू दैट कृष्णा विल टेक केयर. वो नियोफाइट इनोसेंस रहता है ना, समटाइम्स इट इज ऑलवेज बेटर टू कैरी इट ऑल थ्रू लाइफ. जब थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं तो हम लोग ज्यादा कैलकुलेट करने लगते हैं. नियोफाइट इनोसेंस इज ऑलवेज बेटर.
लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ यू नो व्हाट माताजी इज मेंशनिंग, कर्दम मुनि देवहूति, कि देवहूति वो स्वयंभू मनु की पुत्री और कर्दम मुनि एक वैरागी विचरण करते हुए और स्वयंभू मनु आए अपने देवहूति, वो प्रिंसेस थी देवहूति, और देवहूति उनके ब्यूटी के बारे में बताया गया है कि गलती से एक बार छत के ऊपर वो कुछ गेंद से खेल रही थी अपनी युवावस्था में, तो एक डेमिगॉड अपने विमान पर ऊपर से जा रहे थे, उसकी ब्यूटी को देखकर विमान से नीचे गिर गए बेहोश होके. ये देवहूति इनकी ब्यूटी थी. और कर्दम मुनि वो ऐसे विरक्त साधु कि उनको खुद का कुछ अता पता, उनका कुछ भान, कोई मकान वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन स्वयंभू मनु ने क्या देखा कि ये व्यक्ति मेरी बेटी को आध्यात्मिक रूप से बचाएगा. और फिर एंड रिजल्ट क्या हुआ, कपिल मुनि एक स्वयं साक्षात भगवान के अवतार उनके पुत्र के रूप में प्रकट. तो कई बार होता क्या है कि यहां पर ये आप लोग अपना व्यूज आप देते रहिए. एक मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई बार टाइट रोप पर चलते हुए आपका फोकस पिलो के ऊपर नहीं रहता है, आपको आंखों से पिलो नहीं दिखेगा नीचे, लेकिन आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए है. समटाइम्स कृष्णास प्रोटेक्टिव पिलो इज इनविजिबल. यस प्रभु. समवन, या
प्रभु जी, ये पिक्चर से मुझे एक मेरा रिस्क लिया हुआ वो याद आया, वो बता दो. एक्चुअली 22 साल पहले लिया हुआ रिस्क है वो.
22 साल पहले?
हाँ, 1992 जब मैं 17 साल का था, तब अयोध्या में कार सेवा का प्रोग्राम था, तो मुझे वहाँ जाना था. तो नासिक से जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे वो जा रहे थे 28 नवंबर को, तो उनके जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे बांकेलाल चतुर्वेदी. तो वो हमारे घर के मेंबर जैसे थे, मेरे दादाजी के दोस्त थे, तो मैं उनके घर गया, उनको बताया कि मुझे आना है. तो वो लेके तेरे पिताजी से परमिशन लेके आ. फिर मैंने बोला पिताजी तो अभी बाहर गाँव गए थे, तो वो तो है नहीं, वो 15-20 दिन के बाद आने वाले. तो बोले तेरे दादाजी से परमिशन लेके आ. नहीं, मैंने उनको बोला कि मैं दादाजी से परमिशन लेके आता हूँ तो आप मुझे आने देंगे. तो पहले वो बोले हाँ ठीक है, फिर दादाजी ने उनको फ़ोन किया कि ये आना चाहता है तुम्हारे साथ अयोध्या, तो इसको लेके जाओ. बाद में मैं उनके पास वो रेल के पासेस लेने गया था ट्रेन के, तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, तेरे दादाजी ने हाँ बोला, लेकिन तू तेरे पिताजी आने के बाद मुझ पे चिल्लाएंगे तो तू मत आ. मैंने बोला नहीं, मुझे तो आना ही है. तो उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी. तो वो जो ट्रेन से जाने थे मैंने सब इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी. तो जैसे वो लोग सब स्टेशन पे जमा हो गए, मैं भी उस स्टेशन पे आ गया. तो उन्होंने मुझे देखा, बोला श्रीपाद तेरे को बोला ना नहीं आने का, तू क्यों आया स्टेशन पे, चल घर जा. तो मैं बोला ठीक है जाता हूँ, और उधर ही ट्रेन स्टेशन पे छुपा रहा. जैसे ट्रेन आई मैं पीछे के बोगी में चढ़ गया. और फिर भुसावल स्टेशन के आगे हमारे जो राणा प्रताप साइंस शाखा के हमारे जो टीचर थे कृष्णा घरोटी, श्याम घरोटी, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया ट्रेन में छुपने के लिए. और फिर भुसावल में आने के भुसावल के आगे फिर मैं उनके सामने आ गया. बोला तू ट्रेन में कैसे आ गया? उन्होंने बोला मैं तो आ गया अभी. बोले तू पक्का राम भक्त है, तू नहीं छोड़ेगा? तो हाँ अभी चल, बोले आया तो अभी चल.
फिर हम 30 नवंबर को अयोध्या पहुंचे और मेरी बड़ी सिस्टर भी थी उसमें, वो भी आई थी साथ में, लेकिन वो ऑफिशियली उनके साथ आई थी। तो फिर हम 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक अयोध्या पूरे घूम रहे थे, किधर क्या चल रहा है पूरे अयोध्या में, इतने जगह, वो सरयू नदी में रोज स्नान करना, बहुत 5-6 दिन बहुत अच्छे गए। और मेन 6 दिसंबर को जब मेन प्रोग्राम था, तो जैसे तो जैसे वो नेता लोगों के भाषण वगैरह चालू हो गए, तो हम बाबरी मस्जिद की तरफ जाने लगे और फिर उसके ऊपर चढ़ गए
अभी।
हाँ, और मेरे साथ वो कृष्णा श्याम घरोटे भी थे, हम दोनों ऊपर चढ़ गए और तभी श्याम घरोटे का पैर फिसला और वो नीचे गिर गए और उनको हॉस्पिटल लेके गए। वो बाद में मुझे पता चला उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था। और फिर मैं पूरा दिन वो बाबरी मस्जिद में तोड़ने में उनके साथ था, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। फिर शाम को 5 बजे के बाद पूरा वो बाबरी ढांचा ध्वस्त होने के बाद, फिर रामलला का छोटा मंदिर वहां पे वो एस्टेब्लिश किया।
भाई थोड़ा धीरे बोलिए।
और फिर रात को 10:30 बजे वहां से नीचे उतरा। पूरा अयोध्या में दिवाली चालू होता और सब दिवाली के जैसे दिए बिये लगाए थे और पूरा सब फटाके विटाके बजा रहे थे, फिर खिचड़ी विचड़ी बांट रहे थे वो। फिर तब सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10:30-11 बजे मैंने पहले खिचड़ी खाया और फिर वो हमारे तंबू की तरफ गया। तो वो बड़ी सिस्टर रो रही थी, सुबह से गायब हो गया, किधर गया। मुझको देखते पहले उसने फटाक से थप्पड़ लगा दिया, किधर गया था तू। बोला जो काम करने आया था वही करके आया। और अब जब 22 साल के बाद इस्कॉन में आया तो मुझे समझ में आया कि उस दिन जो किया उसकी वजह से भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दिया।
अरे वो अभी तो कोई इरादा नहीं है ना। तो हमारे श्रीपाद प्रभु बहुत एडवेंचरस हैं, एक एक आपकी नई नई स्टोरी सुनने मिल रही है अभी। ओके, तो बहुत बड़ा रिस्क है भाई ये जो इन्होंने लिया, मतलब 22 साल के बाद भी बावजूद आप यहाँ सांस लेते हुए हरे कृष्णा में, ये बहुत बड़ा कारनामा है। हरी बोल। यस, ओके। तो हमारे इस इमेज के ऊपर बेसिक इसके पीछे प्रिंसिपल ये है, एक टर्म है रिस्क मैनेजमेंट। एक सेमिनार जनरली न्यू एज इसके अंदर दिए जाते हैं, मैनेजमेंट सेमिनार्स में, उसके अंदर बताया जाता है कैलकुलेटेड रिस्क। कि रिस्क लेना अपने आप में कोई बहादुरी की बात नहीं है। जैसे कि कोई अगर पंखे के ऊपर लटक कर अपनी जान ले रहा है, रिस्क ले रहा है ना, बट दैट इज स्टूपिड। कोई सुइसाइड कर रहा है, कैसे अलग अलग तरीकों से लोग सुइसाइड करते हैं। कई बार ये भी सुनने को आता है कि अपने आप को सेल्फ इमोलेशन जिसको बोलते हैं, जला दिया, या ट्रेन के नीचे, ट्रेन के नीचे आ जाना, लगता है कि बहुत इसके अंदर हिम्मत है। तो ऐसे रिस्क टेकर को आप क्या कहोगे? शास्त्रों के अनुसार उनको कायर बोला जाता है, कायर, क्योंकि यहां रहकर जीकर समस्याओं को झेलकर सुलझाकर फिर जीवन जीना, वो ट्रेन के नीचे आने से या अपने आप को खत्म करने से ज्यादा रिस्की है। तो अपने आप में रिस्क जो है उसको जब तक हम डिफाइन या रीडिफाइन नहीं करते, वो रिस्क सही या गलत हो सकती है। इसलिए मैं अब ये जानना चाहूंगा हमारे फोरम से कि इस्कॉन में आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि जो इनिशियल आपने रिस्क लिया, जैसे बहुत से यहां पर भक्त दीक्षित भी हैं, तो आपने किसी गुरु को अपनाया है, आपने कमिटमेंट दिया है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दिया है गुरु को, तो क्या आपको ये तकिया दिखाई दे रहा है जो इनिशियली नहीं दिखाई दे रहा था, जो मैंने अभी कहा द इनविजिबल पिलो ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा। हाँ, इनिशियली साधना भक्ति इस्कॉन में आना वॉज वॉकिंग लाइक ऑन अ टाइट रोप विदाउट नोइंग। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल दूं कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं छोड़कर कहां जा रहा हूं। मैं ऑनेस्टली कहूंगा दो व्यक्तियों को मैं पर्सनली अच्छे से जानता था, एक राधानाथ महाराज और भक्ति प्रसामृत महाराज। और कितना समय हुआ था इनको जानकर? 6 महीने। और मैंने कोई क्रॉस चेक नहीं किया था कि ये जो बोल रहे हैं वैसे हैं कि नहीं। सो इट वॉज डेफिनेटली वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, लीविंग बिहाइंड वॉट यू हैड ड्रीम्ड अबाउट योर सेल्फ। लेकिन फिर धीरे 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 मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करते गया कि जो भगवान का प्रोटेक्टिव पिलो। इसलिए ये बात ध्यान में रखना, ये हम क्यों इसको इतना डिस्कस कर रहे हैं कि यदि आज तक आपने भगवान के लिए रिस्क नहीं लिया है ये सोचते हुए कि मुझे वो तकिया दिखाई नहीं दे रहा है, यदि मुझे तकिया नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम ये जो हमारा फोरम तैयार हो रहा है इसके अंदर हम ऐसे रिस्क टेकर्स को इकट्ठा करें जो एक एग्जाम्पल बने कि भगवान के लिए जब हम रिस्क लेते हैं तो कैलकुलेशन भगवान करते हैं। जो मैनेजमेंट लिंगो ये है ना, कैलकुलेटेड रिस्क, दैट यू शुड टेक, you should take, you cannot do anything without taking risk, but that risk should be calculated, not uncalculated or stupid risk. ab ye hum nahi keh rahe ki chalo yahan se kood ke batao bhagwan ke liye, pralhad maharaj ko phenka gaya tha, aapko bhi main dhakka maar ke dekhta hu, nahi, we are not expecting that kind of stupidity. लेकिन हम चाहते हैं, तो मैं अब एक थोड़ा सा फिर से डिस्कशन शुरू करना चाहूंगा कुछ समय के लिए कि आप कुछ शेयर कर सकते हैं कि जो आपने कभी सोचा कि मैं भगवान के लिए रिस्क कभी तो लूंगा लेकिन अभी तक लिया नहीं है, और अभी क्यों नहीं लिया है कुछ अगर उसके कारण हो, और किसी ने ले लिया है और क्या एक्सपीरियंस उनके रहे। जैसे कि अभी बाताजी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था, और जो उस समय कुछ 4 साल भगवान ने टोटल मेरे को डार्कनेस में रखा कि आगे का जीवन क्या होने वाला है। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस्कॉन कितना बड़ा है कि मेरे को सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं। हाँ, पहले हम लोग देखभाल कर लेते हैं ना कि भाई मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं, मेसिंग लॉजिंग सब कुछ बराबर है कि नहीं, कोई अंदाजा नहीं। एक वो जो जिसको कहते हैं ना जुनून, एक एक जुनून सा छा गया था कि लेट व्हाट मे कम आई हैव टू डू समथिंग फॉर कृष्णा. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि आई कुड फील द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा. देयरफॉर पर्सनली आई ऑलवेज से दिस इज माय स्टैंडिंग रूल which I advise, I would like to share with this forum. I try to see the hand of Krishna rather than seeing the face of Krishna. What is the difference? That's what I would like to share. Don't try to see the face of Krishna, try to see the hand of Krishna. And if you try to see the hand of Krishna, there is no difference between the face and the hand of Krishna. And then there will be nothing impossible to achieve as far as if you have, like Draupadi, taking the risk, okay, Dushyasan, you want to disrobe me? I throw up my hands. Krishna is there. Ek stri ke liye bhari sabha mein itna bada risk lena. द्रौपदी ने जो रिस्क लिया और भगवान उस पॉइंट तक द्रौपदी को लाए, भगवान उस पॉइंट तक द्रौपदी को लाए. एक हमारे अन्य शास्त्र में बताया गया है कि भगवान रुक्मिणी के साथ चेस खेल रहे थे द्वारका में और रुक्मिणी खबर फैल चुकी थी कि असत सभा में द्रौपदी को लाया गया है निर्वस्त्र करने के लिए और भगवान निष्फिकर चेस खेल रहे. रुक्मिणी पूछ रही कि द्रौपदी की ऐसी स्थिति है और आप यहां पर, आपको खेल की पड़ी है. भगवान ने रुक्मिणी से कहा वो अब तक उस पॉइंट पर नहीं आई है. कौन सा पॉइंट? मेरे लिए रिस्क लेने का पॉइंट, मेरे लिए रिस्क लेने. तो इसलिए यदि हम सब कुछ देखभाल कर भक्ति करते हैं ना, वो मेंटालिटी किसकी है पता है? डेमीगॉड्स. डेमीगॉड्स की मेंटालिटी क्या है? वो लोग भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो लोग भक्ति कैसे करते हैं? पहले भगवान तकिया दिखाओ, रस्सी कितनी लंबी हो पहले बता दो, टाइट है कि नहीं, टूटने नहीं वाली है पहले बता दो, एश्योरेंस अब दे दो, फिर हाँ चलो जय श्री कृष्णा, फिर जय श्री कृष्णा. तो जब अगर हमारी भी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी, फर्स्ट शो मी ऑल द इंश्योरेंस पेपर्स, देन आई विल सर्वधर्मान परित्यज. दैट इज डेमीगॉड मेंटालिटी. So therefore, we in our individual lives, we have to decide that what are the risky areas which I am avoiding for Krishna. इसलिए तो हमने ये जो general जानते हुए कि क्या risky है, हर संडे मंगल आरती, हर रोज साधना कार्ड भरना, रोज रीडिंग करना, रोज कृष्णा कॉन्शियस टाइम बिताना एक साथ, है ना. अभी अभी हमको ये कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ये साधना कार्ड जब मिला तो थोड़ा लगा ना कि एक, अरे यार एक ऑब्स्टिकल आ गया, अच्छा खासा थोड़ा मैंने एडजस्ट करके कृष्णा कॉन्शियसनेस जी रहा था, ये क्या है ना. जैसे अचानक स्वीट राइस खा रहा हूं, अचानक कंकर आ गया, अच्छा खासा स्वीट राइस चल रहा था, साधना काल बोल भी नहीं सकते, ये कंकर है। जैसे मुझे याद है हमारे एयरफोर्स के मेस में खाते खाते हम ऐसे टेबल पे जब सब लंच के लिए खाते थे तो अक्सर कंकर बहुत आते थे, तो जैसे आवाज आई कंकर को अपने दबा दिया चबा दिया उसकी आवाज आई तो काजू आया तेरे को काजू आया तो उसको और चिढ़ाते थे, उसके बेचारे का यहाँ पे पूरा बेस्वाद हो गया और वो दांत अभी सुन्न हो गया, इतना बड़ा इतने बड़े बड़े कंकर उसको चिढ़ाने के लिए। फॉर्चुनेट है काजू आया तेरे पास। तो कई बार हमारे इसमें भी ऐसे होता है, इसको बोलते हैं सेडिस्टिक प्लेजर, कि जो फोरम में नहीं है अच्छा तेरे को मिल गया काजू साधना कार्ड। तो क्या होता है कि अब जैसे ये अटेंडेंस है ये डिसिप्लिन है जो भी कुछ है ये अभी हमको कैसे लग रहा होगा, जैसे इनिशियली जब हम आए और हमारे काउंसलर ने जो भी हमारे फर्स्ट गुरु ने शिक्षा गुरु जो भी हुए होंगे उन्होंने कहा प्रभु सोला माला प्रभु चाय कॉफी प्रभु कांदा लहसुन प्रभु, तो उस समय क्या कैसे अच्छा ये सब, तो उस समय की जो फीलिंग थी अभी वो सब इतना आसान लगता है, वो सब लगता है इसलिए हमने वो कॉलम डाला ही नहीं उसके अंदर, प्याज लहसुन चाय कॉफी ये सब कॉलम डाला ही नहीं उसके अंदर, ऐसे कॉलम्स इंक्लूड किए कि जो हमें पता है, जैसे वो माता जी कह रहे थे कि वो हमारे अंदर खामियां थी लेकिन प्रिंट फॉर्म में नहीं थी, है ना, खामियां थी लेकिन किसी ने माता जी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया मुझे आईना नहीं दिखाया। और अक्सर होता क्या है कि हमको क्या दिखाया जाता है बाहर क्या दिखाते हैं, आईना नहीं दिखाते, आपकी फोटो खींचते हैं और आप अगर बदसूरत हो तो फोटोशॉप में एडजस्ट करके अच्छा दिखाते हैं। फोटोशॉप में क्या होता है कि अगर आप बदसूरत भी हो यहां पे बाल नहीं है तो फोटोशॉप में बाल डाल डूल के अच्छी से फिर आप देखते हो मैं हूं अच्छा इतना सुन। तो सब लोग इस भ्रम में जी रहे हैं, दे जस्ट सिंपली वॉन्ट टू लुक एट देयर फोटोशॉप ऑल्टर्ड इमेजेस, नोबडी वॉन्ट्स टू लुक इन टू मिरर्स। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है, सुबह उठकर अपना बदसूरत चेहरा आईने में देखना बिना मुंह धोए, बहुत बड़ा रिस्क है। बड़े बड़े एक्ट्रेसेस उन्होंने सुइसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि जब झुर्रियां उनके चेहरे पर आना शुरू हुई तो अब ये झुर्री ग्रस्त चेहरा कैसे हम दिखाएंगे उन दर्शकों को जो आदि थे मेरे सुंदर चेहरे के। तो इसलिए अभी हम फिलहाल यहीं पर विराम देंगे और इस इमेज को लेते हुए अगली बार, हाँ एक्चुअली आपको हम अनाउंस करना चाहेंगे कि अगला जो हमारा मीट होगा उसका डेट आ रहा है 12th अप्रैल, और 12th अप्रैल को हमने IYCF के लिए एक कंबाइंड सेमिनार रखा है, प्रेरणा चेतना IYCF उत्कर्ष सबका, हमारे शुभ विलास प्रभु आ रहे हैं, तो उनका टॉपिक है 7 Secrets of Lasting Friendship। तो हमने इस फोरम को भी उसके अंदर, क्योंकि वो शाम के समय प्रोग्राम होने वाला है और वो उनका डेट 12th ही मिला हमको, तो मैच हो रहा है हमारे IYCF का फोर्टनाइट जो मीट है उससे, तो इसलिए नेक्स्ट हमारा जो होगा इसको हम फिर हमारे नेक्स्ट मीट में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट IYCF जागृति में हमारे गेस्ट स्पीकर, जैसे हमने कहा था गेस्ट स्पीकर्स को हम बुलाएंगे, तो हमारे फर्स्ट गेस्ट स्पीकर इस फोरम और बाकी हमारे जितने फोरम्स है उनका नीचे टेंपल हॉल में प्रोग्राम होगा। ओके, 7 Secrets of Lasting Friendship। इन द मीन वाइल साधना कार्ड आपको नेक्स्ट 15 डेज के अभी दिए जाएंगे, हाँ काजू दिए जाएंगे अभी, उसको बाजू में मत रखना। एक्चुअली साधना कार्ड हम दो दिन और बाकी है ना, तो अभी कितनों ने लाया, वो अभी कितनों ने लाया साधना कार्ड? ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर दो दिन का कॉलम खुद ही आप पेन से बना लो, और अभी जो आप साधना कार्ड लाए हो मुझे सबमिट कर दो, और जो नहीं लाए हैं फिर वो पर्सनली मेरे को दे सकते हैं, कल दे सकते हैं, संडे भागवतम के बाद, या परसों दे सकते हैं। तो इसमें है क्या जगह, है क्या दो दिन ऐड करने का जगह है? पीछे पीछे आप ऐड कर दो दिन।